आरव जो कर रहा था उसके पीछे का कारण भले ही वो किसी और को ना बताए, लेकिन गौरवी जी के सामने वो चुप नहीं रह सकता था। जैसे ही उन्हें पता चला कि तलाक के बाद आरव ने मंथन और आयु का रिश्ता खुद तय करवाया है, तो वो काफ़ी गुस्सा हो गई थीं और आरव से अकेले में बात करने के लिए गौरवी जी डिज़ायर्स पहुँच गई थीं। हालांकि वो सुबह जल्दी आई थीं, लेकिन फिर भी आरव किसी क्लाइंट के साथ बिजी था। जैसे ही वो आरव के केबिन में घुसने लगी, युवानी तुरंत उनके सामने आ गई। आरव अपने केबिन की खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसने गौरवी जी की गाड़ी को देख लिया था। इससे पहले कि गौरवी जी उसके पास आती, उसने तुरंत युवानी को उन्हें रोकने के लिए भेज दिया था। दादी, बस थोड़ी देर वेट कर लीजिए, सर ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है, युवानी ने आरव के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए कहा। किसी में और मुझ में फ़र्क है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो कोई बिजी नहीं है, बस मुझे टाल रहा है, गौरवी जी ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया। युवानी की नज़रें नीची हो गई थीं। उसकी झुकी हुई नज़र देखकर गौरवी जी सच को भांप गई थीं, लेकिन फिर भी युवानी आरव के सामने मजबूर थी। मैं आपके आने के बारे में बताती हूँ, पिछली बार आयु मैम भी ज़बरदस्ती अंदर चली गई थीं और सर काफ़ी गुस्सा हो गए थे, प्लीज़ समझिए दादी, युवानी ने लाचारी से कहा। गौरवी जी ने युवानी का सोचकर हल्के से सर हिला दिया था और उसी फ्लोर पर बने प्राइवेट रूम में चली गई थीं। लगभग आधे घंटे बाद आरव उनके पास पहुंचा। इस आधे घंटे में आरव का इंतज़ार करते हुए उनका गुस्सा और भी बढ़ गया था। जैसे ही गौरवी जी ने आरव को देखा, वो दांत भींचते हुए बोली, वेलकम मिस्टर खुराना, मुझे नहीं पता था कि आजकल आप डिज़ाइनिंग का काम छोड़कर मैरिज ब्यूरो खोलकर बैठे हैं, जहां आपका पहला क्लाइंट आपकी ही वाइफ थी। दादी रिलैक्स कीजिए और मुझे भी करने दीजिए, पूरी बात जाने बिना आप मुझे ताने नहीं मार सकती हैं, आपकी लाडली बहू के कारनामे भी सुन लीजिए, आरव ने आंखें घुमाकर कहा और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करके उनके पास आ गया था। इस आधे घंटे में आरव अच्छे से सोचकर आया था कि उसे गौरवी जी को कैसे मनाना है। आरव के सामने बैठते ही गौरवी जी तंज भरे लहजे में बोली, कारनामे तो आपके भी बहुत सुनने को मिल रहे हैं, आखिर हो क्या गया है तुम्हें, अकल पर पत्थर पड़ गए हैं जो पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो? मैं पागल नहीं हुआ हूँ, बस अब अकल आई है, मुझे बस यही कहना है कि मुझे किसी को फोर्सफुली अपने पास नहीं रखना है, आयु मंथन के साथ थी, आरव ने गहरी सांस लेकर कहा। आखिरी लाइन कहते हुए उसे अपने सीने में एक दर्द सा महसूस हुआ। आयु मंथन के साथ थी, ये कौन सी नई बात है, तुम्हें अच्छे से पता है कि वो दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, अब अचानक तुम्हारा मेली को बीच में कैसे आ गया, तुम दोनों की शादी कैसे हुई थी, अब क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा, अब ये मत कहना कि अचानक तुम्हारे दिमाग में उन लोगों के खत्म हो चुके रिश्ते को लेकर शक पैदा हो गया है, गौरवी जी ने हल्के हैरत भरे लहजे में कहा। उनका रिश्ता तो कभी खत्म ही नहीं हुआ था, मैं इतनी छोटी सोच का नहीं हूँ कि मुझे उसके पास से कोई प्रॉब्लम हो, आरव ने जवाब दिया। तो आखिर किस बात से प्रॉब्लम है, सीधे सीधे बताते क्यों नहीं हो, गौरवी जी ने चिल्लाकर कहा। आरव ने उस रात क्या देखा था वो किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, पर गौरवी जी ने उसे मजबूर कर दिया था, अगर वो उन्हें सच नहीं बताता तो वो उसे ही गलत समझती। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और उसने जो उस रात देखा था वो सब गौरवी जी के सामने रख दिया था। पूरी बात बताने के बाद आरव ने भारी आवाज में कहा, सॉरी टू से दादी, लेकिन मैं इतना भी मॉडर्न नहीं हूं कि अपनी वाइफ को किसी और के साथ बेड पर देख सकूं, अगर उसे वही चाहिए तो वो उसी के पास रहे। गौरवी जी के लिए ये बात हजम कर पाना ही मुश्किल था कि आरव के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करने के बाद आयु मंथन के साथ इस तरह का रिश्ता बना सकती है, पर साथ ही उन्हें ये भी यकीन था कि आरव क्यों झूठ बोलेगा। देखो आरव, शायद कोई गलतफहमी हुई हो, मैं आयु को अच्छे से जानती हूँ, तुम उसके कैरेक्टर पर इस तरह सवाल नहीं उठा सकते हो सकता है मंथन के साथ कोई और हो, गौरवी जी ने उसे समझाना चाहा। आरव ने तुरंत अपनी नज़रें उनसे फेर ली थीं, वो नहीं चाहता था कि उसकी नम होती आंखें गौरवी जी देखें। कोई गलतफहमी नहीं है दादी, और एक बार मेरा भी सोचिए कि मेरे लिए भी ये आसान नहीं है, पहले उसे किसी और के साथ देखना, फिर उसका हाथ छोड़कर उसी के साथ अपने प्यार की शादी करवाना, आरव ने शांत लहजे में जवाब दिया। वो गौरवी जी की तरफ पलटा और फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, जो गलती डैड ने की मैं वो दोहराना नहीं चाहता हूँ, वो मेरी मॉम को ज़बरदस्ती अपने पास रोक कर रखना चाहते थे, जिसका नतीजा उन दोनों की मौत निकली, और मैं नहीं चाहता कि आयु की हालत मॉम जैसी हो जाए, वो कभी उस घुटन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मुझे अपने प्यार का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दिल में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आरव की बातों के आगे गौरवी जी भी लाचार हो गई थीं, वो यही सोचकर आई थीं कि आरव को समझाएंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़बरदस्ती भी करेंगी, पर सच जानने के बाद ना चाहते हुए भी उन्हें आरव की बातों पर सहमत होना पड़ा। जो तुम्हें ठीक लगे वही करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आयु पर यकीन नहीं है, जब एक साथ एक घर में इतने साल रहते हुए भी आयु ने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, तो आई डोंट थिंक सो कि अब उसने ऐसा कुछ किया होगा, गौरवी जी ने इतना ही कहा और फिर वहां से चली गई थीं। उनकी आंखों में नमी थी, वो गाड़ी में बैठते हुए खुद से बड़बड़ाएं, इसका मतलब माहिरा गलत नहीं कह रही थी, इनके बीच इतना सब कुछ चल रहा था और आरव ने बताया तक नहीं। उम्मीद है कि आरव जो कर रहा है उससे आयु को खुशी ही मिले। गौरवी जी के पास भी चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ मंथन की आयु से बात नहीं हो पा रही थी तो वो बहुत परेशान हो गया था। उसे कुछ भी करके आयु को सच बताना था और बस यही सोचकर वो सीधा लुधियाना पहुंच गया था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके अंदर के सवाल और घुटन उसे जीने नहीं देते। मंथन जब ओबेरॉय मेंशन पहुंचा तब आयु के अलावा घर पर कोई नहीं था। अचानक उसे अपने सामने देखकर आयु घबरा गई थी। एक पल के लिए वो ये भी भूल गई थी कि उसकी और मंथन की अब शादी होने वाली है। उसके सामने बस वही दृश्य घूम रहा था जब होटल रूम में मंथन जबरदस्ती उसके कमरे में घुसाया था। मंथन के अंदर आते ही आयु उसे देखकर खुद ब खुद कुछ कदम पीछे हो गई थी। उसका चेहरा देखते ही मंथन को समझ आ गया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। प्लीज ऐसे रिएक्ट मत करो, लास्ट टाइम जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ था। तुम अभी भी उसे भूली नहीं हो तो फिर शादी करने के लिए हाँ कैसे कह सकती हो, मंथन हैरानी से बोला। साथ ही उसे दुख हो रहा था कि जिस मंथन के साथ मंथन आयु सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती थी आज वो उसी को देखकर डर रही थी। वहीं मंथन के बोलते ही आयु को ख्याल आया कि उसने मंथन से शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। वो जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम अचानक से आई तो मैं डर गई थी, बैठो बात करते हैं। इतना कहकर आयु आगे आई और उसने मंथन को बैठने का इशारा किया। वो उसके सामने काउच पर बैठ गई थी। मंथन यहाँ उसे अनु और अपने बारे में बताने के लिए आया था लेकिन आयु के बर्ताव ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो आयु के सामने बैठा और हैरानी भरे भाव से बोला, तुम आज भी मुझसे अनकंफर्टेबल हो रही हो, फिर इस शादी के लिए हाँ बोलने का क्या रीजन है?
सब कुछ आरव की जिद की वजह से हो रहा है। सच कहूँ तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तुमसे क्या, किसी से भी नहीं करनी है, आयु ने जवाब दिया। वो कुछ पल हिचकिचाई और फिर मंथन की आंखों में देखते हुए बोली, आरव और मेरे बीच की शादी अब सिर्फ नाम की नहीं रही है, हम दोनों के बीच, हम दोनों एक दूसरे की क्लोज आ गए थे। मैं उसी से प्यार करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे साथ नहीं रहता है, बस मुझे उसकी जगह किसी और को नहीं देनी। ट्रस्ट मी, वो भी मुझसे प्यार करता है, पर मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया जो वो हम दोनों की शादी करवाना चाहता है। ना वो मेरी सुन रहा है और ना ही घर वाले। प्लीज़ तुम इस शादी के लिए मना कर दो, बोलते हुए उसकी आवाज़ भारी हो गई थी और वो मंथन को उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी। अगर तुम इस वजह से शादी करने से पीछे हट रही हो कि तुम्हारे और आरव सर के बीच किसी तरह का रिश्ता बन गया था तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही गलती मुझसे होती तो तुम मुझे माफ़ कर देती। सॉरी, मैं मना नहीं करूँगा, तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कब से मुझे इस दिन का इंतज़ार था। तुम चाहो तो टाइम ले सकती हो, पर अगर आरव सर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते तो तुम क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो? मैंने मना कर भी दिया तो तुम्हारे घर वाले किसी और के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ने का सोचेंगे। मुझसे ज़्यादा तुम उन्हें अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी लाइफ में जो भी चल रहा है उसके बाद से उनका मोटिव तुम्हारी शादी करवाना ही है, मंथन ने उसे समझाया और उसकी बात कहीं से भी गलत नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आयु उलझन भरे स्वर में बोली। मंथन की बातों ने उसे और भी कन्फ्यूज कर दिया था। पूरी रात आयु इसी बारे में सोच रही थी कि उसने आरव को चैलेंज तो कर दिया है लेकिन आरव भी ज़िद्दी था। अगर उसने मंथन और उसकी शादी नहीं रुकवाई तो उसे पूरी ज़िंदगी मंथन के साथ रहना पड़ेगा। ऐसे में अगर मंथन शादी से इनकार कर देता तो आरव की ज़िद पूरी नहीं होती। अब मंथन ने जो कहा था वो भी गलत नहीं था, वो पीछे हट जाता तो उसकी जगह कोई और आ जाता। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस खुद को थोड़ा टाइम दो। मुझसे अनजाने में जो गलती हुई थी मैं उसे बदल नहीं सकता, पर आई प्रॉमिस आई विल नेवर टच यू विदाउट योर परमिशन, मंथन ने उसकी आंखों में देखकर वादा किया। हालांकि वादा करते हुए भी उसने अपना हाथ आयु के हाथ पर रखने के बजाय अपने सीने पर रखा था। आयु ने हल्के से हाँ में सिर हिला दिया था, वैसे भी उसे अभी फैसला नहीं करना था। जब आयु को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तब मंथन ने इधर उधर देखते हुए पूछा, अनु कहाँ है? वो वेकेशन के लिए एले गई है, कल तक वापस आ जाएगी, आयु ने बताया। वो ठीक है ना, मंथन ने हल्के हिचकिचाहट भरे स्वर में पूछा। उस रात के बाद से मंथन और अनु के बीच कोई बात नहीं हुई थी। मुझे नहीं पता, ठीक ही होगी, तुम खुद कॉल करके पूछ लो, मेरी लाइफ में पहले से इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि कौन कैसा है मुझे खुद नहीं पता, आयु ने हल्के बेरुखेपन से कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ और उम्मीद है कि इस वन मंथ में तुम खुद को शादी करने के लिए तैयार कर लोगी। अगर आखिरी मोमेंट पर भी इनकार करोगी तो मैं अपने कदम पीछे ले लूँगा, मंथन ने उसे आश्वासन दिया। वो यहाँ अपने और अनु के बीच हुई उस रात के बारे में बताने के लिए आया था। आयु की परेशानी देखकर उसे खुलकर बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आयु में भी अपने और आरव के रिश्ते की सच्चाई उसे बताई थी तो ऐसे में उसका फ़र्ज़ बनता था कि वो भी झूठ ना बोले। मंथन ने गहरी सांस ली और जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बोला, आयु मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे अपने और अनु के रिश्ते के बारे में बात करनी है, वो मेरे और अनु के बीच। क्या मंथन हिम्मत करके पूरी बात बता पाएगा? चलिए ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट पर मिलते हैं।